ఓం శాంతి. గుడ్ మార్నింగ్. అభీ ఆప్నే తన్ కో ఫ్రెష్ కియా ఎక్సర్సైజ్ కర్కే. అభీ హమారే సామ్నే ఉపస్థిత్ కి జిన్కా నామ్ లేతే హీ సర్వశాస్త్రమయ శిరోమణి భగవద్ గీతా కి స్మృతి దిలాతా హై, ఐసే హమారే వరిష్ఠ రాజయోగిని ఆదరణీయ బ్రహ్మకుమారి గీతా బహన్ కి జిన్కా హమ్ కర్తల్ ధ్వని సే తహె దిల్ సే స్వాగత్ కరెంగే. आज आपको मन से फ्रेश करने जा रहे हैं. जैसे अभी आपने गीत सुना, आत्मचिंतन द्वारा मन को किस प्रकार शक्तिशाली बनाना है, तो गीता बहन का परिचय देते हुए, गीता बहन की जो 47 वर्ष से इस ज्ञान में चलती हैं और 25 साल से इस बेहद के यज्ञ के अंदर अपनी सेवाएं दे रही हैं, उनकी विशेषता किसी भी ज्ञान के रहस्य को बहुत ही धैर्यता से, शांति से, बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट करने की उनके अंदर कला है. जिन्होंने अपनी वाणी पर माँ शारदा देवी को विराजमान किया है, वीणावादिनी, ऐसी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी गीता बहन का आज हम संपूर्ण वाणी से लाभ लेंगे. आत्मचिंतन द्वारा आध्यात्मिकता का विकास कैसे है, जो आप बहुत ही शांति से सुनेंगे आदरणीय गीता दीदी.
ओम शांति. राजयुग के प्रथम प्रातःकालीन सत्र में आप सबका भी हार्दिक स्वागत है. हमें खुशी है कि भारत एवं नेपाल के विभिन्न स्थानों से आप सभी यहाँ पधारे हैं. प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय पिछले 81 वर्षों से समाज की आध्यात्मिक और सामाजिक सेवा का कार्य कर रही है और हमारी सेवा के मुख्य दो साधन हैं, सत्य ईश्वरीय ज्ञान और सहज राजयोग. कॉन्फ्रेंस के हर सत्र में आप ईश्वरीय ज्ञान सुनेंगे, समझेंगे और साथ साथ योग अभ्यास भी करेंगे. आज के सत्र में, क्योंकि प्रतिदिन के प्रातः काल के ये सत्र विशेष रूप से योग से संबंधित है, हमारा देश अपनी प्राचीन योग विद्या के लिए प्रसिद्ध देश है. हम सबका भी ये नैतिक फर्ज है कि हम योग को यथार्थ रूप से जाने समझे। हम स्वयं भी रोज योग अभ्यास करें और हमारे पास योग का इतना सुंदर अनुभव हो ताकि देश विदेश की कोई भी व्यक्ति हमसे पूछे योग के बारे में तो हम योग का सही मार्गदर्शन दे सके। प्रथम योग शब्द के अर्थ को हम समझ लेते हैं। योग शब्द का अर्थ है मिलन। वियोग माना अलग हो जाना, सेपरेशन। योग माना मिलन मनाना, कनेक्शन जोड़ना, रिलेशन स्थापित करना। इसका आध्यात्मिक अर्थ है आत्मा का परमात्मा से मिलन, जोड़, संबंध। इसलिए योग अभ्यास करने से पहले तीन बातों का ज्ञान जरूरी है। एक तो योग अभ्यास करने वाले हम स्वयं कौन हैं, हमारा अपना वास्तविक परिचय क्या है। दूसरा है साध्य, वो परम पिता परमात्मा कौन है जिससे हमें योग लगाना है, जिसके साथ मन और बुद्धि जोड़ना है, वो परमात्मा पिता कौन है। और तीसरा है योग की विधि क्या है, किस रीति से अभ्यास करना है। आज के इस प्रथम सत्र में हम स्वयं का सही परिचय प्राप्त करेंगे। हर इंसान को ये जानने की जिज्ञासा होती है कि आखिर हम कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं और आखिर हमें कहां जाना है। हर धर्म में इस बात को महत्व दिया गया है कि नो थाई सेल्फ, खुद को जानेंगे तो खुदा को भी पहचान सकेंगे। हम आपस में मिलते हैं, एक दूसरे से परिचित होते हैं, हम पूछते हैं कि आप कौन हैं, आप कौन हैं। इस प्रश्न के उत्तर में हम क्या जवाब देते हैं, हम अपना शारीरिक सांसारिक परिचय एक दो को बताते हैं, हमारी स्मृति में भी ये रहता है कि मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं काला हूं गोरा हूं, युवा हूं बूढ़ा हूं। स्पष्ट है कि हम अपने आप को शरीर समझ रहे हैं, इसलिए शरीर भान में रहते हैं, देहाभिमान में आकर हर कर्म करते हैं। अपने आप को चेक करिए, कुछ एक कर्मों में शरीर के नाम रूप रंग आयु की कॉन्शियसनेस रहती है कि मैं मिस्टर फलाना हूं, पता है मैं कौन बोल रहा हूं, मैं सुंदर हूं साधारण हूं युवा हूं बूढ़ा हूं। शरीर के नाम रूप रंग आयु का भान रहता है। कुछ कर्म व्यवहार संबंधों के अभिमान में आकर हम करते हैं कि मैं इनका पति हूं, पता है मैं फलाने का बेटा हूं, मैं इनकी सास हूं। संबंधों के अभिमान में आकर हम व्यवहार करते हैं। हमें अपने व्यवसाय का अभिमान होता है कि मैं ऑफिसर हूं, मैं उद्योगपति हूं, डॉक्टर हूं, ऑफिसर हूं, शिक्षक हूं, व्यापारी हूं, मिनिस्टर हूं। अपने व्यवसाय का अभिमान रहता है और उस अभिमान में हम व्यवहार करते हैं। इस प्रकार और अपने आप को चेक करिए, धर्म का अभिमान, मैं मुस्लिम हूं क्रिश्चियन हूं पारसी हूं हिंदू हूं, जाति का अभिमान, हम ब्राह्मण हैं बनिया हैं राजपूत हैं, इवन भाषा का अभिमान, हम गुजराती है मराठी है तमिल है तेलुगु है बंगाली है, भाषा का अभिमान रहता है। हम कह सकते हैं कि हम टोटल देहाभिमान युक्त और सांसारिक बन गए हैं, इसलिए हमारा ज्यादा से ज्यादा समय शक्ति धन बुद्धि देह के पीछे, देह संबंधों के पीछे और दैहिक प्रवृत्तियों के पीछे ही खर्च हो रहा है। आज अपने प्रतिदिन के 24 घंटे का हिसाब आप लगाइए, रोज कितना घंटा हम सोते हैं, कितना घंटा सोते, 7-8 घंटा रोज सोते हैं, रोज हम नहाते हैं, तैयार होते हैं, ड्रेसअप होते हैं, रोज हम भोजन करते हैं, कितनी बार खाते हैं, कितनी बार खाते हैं, हाँ? कहने के लिए 3-4 बार, वैसे तो सारा दिन कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, पीते रहते हैं, चबाते रहते हैं। हम कह सकते हैं कि प्रतिदिन के कम से कम 12 घंटे हमारा 50% टाइम खाने पीने सोने नहाने धोने में ही खर्च होता है। आधी जिंदगी खाने पीने सोने में खर्च होती है, बाकी रहे 12 घंटे में से नौकरी धंधे के पीछे, खेती बाड़ी पशुपालन के पीछे, जो भी जिसका व्यवसाय है, कितने घंटे खर्च होते हैं, कितने घंटे, 8-10 घंटे नौकरी धंधे के पीछे, खेती बाड़ी के पीछे खर्च होते हैं, माना 35% टाइम नौकरी धंधे के पीछे खर्च होते हैं। और ये नौकरी धंधा भी हम किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं? अक्सर क्या कहते हैं, पेट के लिए करना होता है, पेट पोषण के लिए, शरीर निर्वाह के लिए, परिवार पालन के लिए करते हैं, बाकी बचे 2-4 घंटे वो भी पारिवारिक सामाजिक प्रसंगों में कार्यों में, टीवी रेडियो इंटरनेट मोबाइल कंप्यूटर के पीछे ही खर्च होता है। ये हमारी रोज की दिनचर्या है, हमारी रोज की दिनचर्या को देखते हुए ये स्पष्ट है कि हम देहाभिमान युक्त, बॉडी कॉन्शियस और सांसारिक बन चुके हैं। हमारा जीवन भौतिकवादी भोगवादी बन चुका है। जीवन के ऐसे सेटअप में कोई हमें आत्म कल्याण के लिए कहते हैं, सेल्फ डेवलपमेंट के लिए कहते हैं, तो अक्सर हम क्या जवाब देते हैं, क्या जवाब देते, टाइम नहीं है, फुर्सत नहीं है। आत्म कल्याण, स्वयं की उन्नति जीवन का वास्तविक ध्येय है, जिसको हम भूल चुके हैं। इसलिए हमें कुछ क्षण शांति से बैठकर सोचने की आवश्यकता है कि हम खुद को देह समझ रहे हैं, देहभान में जीवन जी रहे हैं, देह संबंधों और देह प्रवृत्तियों के पीछे समय शक्ति धन खर्च कर रहे हैं, पर क्या हम शरीर हैं? सोचिए, अपने आप से पूछिए, क्या मैं शरीर हूं? हम तो खुद को देह समझ रहे हैं, देहभान में रह रहे हैं, पर क्या मैं शरीर हूं? जबकि शरीर के बारे में हम जानते हैं, चित्र में बताया है कि वास्तव में शरीर क्या है। शरीर तो हड्डी मांस चमड़ी लहू से बना हुआ एक ढांचा है, जिसको दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि शरीर तो प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ एक पुतला है। प्रकृति के पंच महाभूत हैं, पृथ्वी आकाश जल वायु और अग्नि। हमारा शरीर इन्हीं पंच भूतों से बना हुआ है, इसलिए जब डेड बॉडी को अग्नि संस्कार देते हैं, हम कहते हैं कि पांच तत्वों का बना हुआ शरीर पुनः पांच तत्व में मिल गया। मिट्टी का बना हुआ मानव शरीर पुनः मिट्टी में मिल गया। स्पष्ट है कि शरीर तत्वों से बना है। शरीर तो मिट्टी है, संसार भी पांच तत्वों से बना है, और इस भौतिक जगत में जितनी भी चीजें वस्तुएं साधन वैभव पदार्थ बने हैं, इन आंखों से हम जो कुछ देख रहे हैं प्रकृति के पांच तत्वों से बना हुआ है। जैसे ये चीजें, ये कुर्सी है, सोफा है, टेबल है, माइक है, घड़ी है, खिड़की है, दरवाजे हैं, इन आंखों से जो भी चीजें हम देख रहे हैं, एक छोटी सुई या स्क्रू से लेकर बड़ी से बड़ी मशीन प्रकृति के पांच तत्वों से बनी। जैसे ये चीजें जड़ हैं, नॉन लिविंग हैं, शरीर भी उन्हीं पांच तत्वों से बना जड़ है, नॉन लिविंग है। जैसे ये चीजें परिवर्तनशील है, हर चीज नई से धीरे धीरे पुरानी होती है और आखिर टूट फूट जाती है, खत्म हो जाती है, ऐसे ही शरीर परिवर्तनशील है। हर एक खुद अपने शरीर के साक्षी है, बचपन से लेकर अब तक हमारे अपने देखते देखते हमारा अपना शरीर कितना बदल गया है, बदल गया है कि नहीं बदला? रोज आईने में देखते हो ना शरीर को, शरीर परिवर्तनशील है और आखिरकार नाशवंत है। तो शरीर तो जड़ है, नाशवंत है, लेकिन मनुष्यात्मा, जीवात्मा, ह्यूमन बीइंग शब्द जब हम कहते हैं तो दो अस्तित्व सिद्ध होते हैं, ह्यूमन बॉडी प्लस बीइंग चैतन्य शक्ति आत्मा मिलाकर मनुष्यात्मा जीवात्मा कहा जाता है। तो मानव शरीर के बारे में हम जानते हैं कि शरीर प्रकृति के 5 तत्वों से बना हुआ है, जड़ है, नाशवंत है, लेकिन शरीर को धारण करने वाली जो चैतन्य शक्ति है, जिनको हम इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, अभ्यास के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, जिस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद शरीर डेड हो जाता है, मर जाता है, डेड बॉडी कहा जाता है, शरीर मर जाता है। जिस चैतन्य शक्ति के निकल जाने के बाद हमारे 1-2 के साथ जो संबंध है वो भी समाप्त हो जाते हैं। जैसे ही चैतन्य शक्ति निकल जाती है, हम कहते हैं प्राण चले गए, दीवा बुझ गया, लाइट हैज गोन, ज्योति निकल गई, हमारे 1-2 से संबंध समाप्त हो जाते। हम तुरंत क्या कहते हैं, जल्दी करो, जल्दी सबको समाचार दो, जल्दी तैयारी करो, जल्दी निकालो, हमारे संबंध समाप्त हो जाते हैं। उस चैतन्य शक्ति को आध्यात्मिक भाषा में आत्मा कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम सोल कहते हैं, साइकोलॉजी में जिसे साइकी कहा जाता है, मेडिकल साइंस जिसको कॉन्शियंट एनर्जी कहता है, जिसको हम लिविंग एंटिटी स्पिरिचुअल एनर्जी कहते हैं, सरल शब्द में हम आत्मा कहते हैं। तो मनुष्यात्मा शब्द कहने से दो अस्तित्व सिद्ध हुए, एक 5 तत्वों का बना मानव शरीर जो स्थूल है, इन आंखों से देख सकते हैं, और दूसरी है चैतन्य शक्ति जिसे आत्मा कहते हैं, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, समझ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। प्रश्न आप सबसे ये है कि मैं कौन हूं। आप सोचिए, मैं कौन हूं? क्या हम पांच तत्वों के बने जड़ शरीर हैं जो देखने में आ रहा है, या इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा है? थोड़ा गहराई से, विवेक से सोचिए, हम कौन हैं? जैसे भौतिक शक्ति के बारे में हम आपको बताएं, देखने में तो लगता है कि बल्ब प्रकाश दे रहा है, ये ट्यूब लाइट दे रही है, ये हीटर गर्मी दे रहा है। देखने में बल्ब आता है, ट्यूब आती है, हीटर आता है, पर सत्यता क्या है? सत्यता क्या है? इलेक्ट्रिक पावर ही बल्ब के द्वारा, ट्यूब के द्वारा, प्रकाश के रूप में, हीटर के द्वारा गर्मी के रूप में अनुभव होता है। इलेक्ट्रिक पावर नहीं दिखाई देता है, देखने में चीजें आती है, वस्तुएं आती है। इस प्रकार भल देखने में शरीर आ रहा है, पर सत्य ये है कि हम शरीर नहीं है, क्योंकि शरीर तो जड़ है। मैं जड़ नहीं हूं, मैं सोचती हूं। हम विचार करते हैं, ये चैतन्यता की निशानी। जड़ चीजें सोच नहीं सकती, मैं सोचती हूं। मुझे स्मृति रहती है, मुझे इच्छाएं होती हैं, मैं कर्म करती हूं, मुझे अनुभव होता है, मुझे दूसरों के लिए सहानुभूति, हमदर्दी होती है। ये चैतन्यता की निशानियां हैं। दूसरों के दुख, दर्द, कष्ट पर अगर हमें जरा भी सहानुभूति ना हो, हमदर्दी ना हो, हमें जरा भी दया, रहम, प्यार ना आता हो, हम ऐसे व्यक्तित्व के लिए क्या कहते हैं? क्या कहते कि ये तो बिल्कुल जड़ है, पत्थर है, कठोर दिल है, इसको जरा भी दया नहीं आती। तो ये विचार करना, इच्छाएं होना, याद रहना, कर्म करना, अनुभव करना, सहानुभूति होना, ये चैतन्यता के लक्षण है, सिद्ध है कि हम चैतन्य शक्ति हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य हमें यही समझना है कि हम चैतन्य शक्ति हैं, हम एक आत्मा हैं। सुनने में तो बड़ी साधारण बात लग रही है, आप सोचेंगे कि ये तो हम जानते क्योंकि जब कोई शरीर छोड़ते हैं, मृत्यु होती है किसी की, हम श्रद्धांजलि देते हैं, कौन से शब्द बोलते हैं उस समय, क्या कहते, उस आत्मा को शांति मिले, उस आत्मा की सदगति हो, हम कहते हैं ना श्रद्धांजलि में। देखिए, शरीर छोड़कर जाने वाली, क्योंकि गई कौन, गई कौन, आत्मा, शरीर तो यहां ही पड़ा है, शरीर छोड़कर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं कि उस आत्मा को शांति मिले। क्या जीते जी शरीर में रहते हुए हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, समझते हैं नहीं, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि शरीर छोड़कर जाने वाली, जीवन समाप्त होने पर जाने वाली आत्मा के लिए हम कहते हैं उस आत्मा को शांति दे दे। क्या जीते जी शरीर में रहते हुए हम अपने आप को आत्मा समझते हैं, समझते हैं नहीं समझते, ये कितनी बड़ी अज्ञानता है कि हम जीवन भर खुद को देह ही समझते रहते हैं, देहभान में ही जीवन जीते रहते हैं। इसलिए भले ये सुनी हुई जानी हुई साधारण बात लग रही हो, लेकिन ये मूल सत्य है जिसको स्मृति में रखना है, याद रखना है कि मैं आत्मा हूं। हमें स्पष्ट रहे कि मेरा शरीर है, मैं शरीर नहीं, मैं और मेरा तो अलग है, ग्रामेटिकली भी अलग है। हमें स्पष्ट ही नहीं है कि मैं कौन हूं और मेरा क्या है। मेरा शरीर है, मेरे हाथ कमजोर है, मेरे पांव थक गए, आज मेरे सिर में दर्द है, मेरे पेट में गड़बड़ हो रही है, मीन्स मैं हाथ नहीं हूं, मैं पांव नहीं हूं, मैं सिर नहीं हूं, मैं पेट नहीं हूं, मीन्स मैं शरीर नहीं हूं, मेरा शरीर है, मैं तो इस शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा हूं, जो अति सूक्ष्म है, ज्योति बिंदु स्वरूप है। इसलिए आत्मा निकल जाती है, हम कहते हैं लाइट है सुगोन, ज्योति बुझ गई, क्योंकि आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, पॉइंट ऑफ लाइट एंड माइट है। और आत्मा शरीर धारण करने के बाद मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। मस्तक ब्रेन बॉडी का मेन कंट्रोलिंग ऑफिस है। आत्मा चूंकि बॉडी की कंट्रोलर है इसलिए मस्तक में स्थित होकर शरीर को चलाती है। इसी का यादगार भक्ति में हम मस्तक में तिलक करते हैं। हर शुभ कार्य में भाइयों को बहनों को बच्चों को सबको हम तिलक करते हैं, अक्षत कुमकुम लगाते हैं। ये अविनाशी आत्मस्मृति का प्रतीक है। भक्ति में हम तिलक करते हैं पर खुद को आत्मा समझते नहीं हैं, देहभान में ही रहते हैं। यहां हम तिलक नहीं करते हैं, यहां हम खुद को आत्मा समझते हैं। राजयोग का प्रथम अभ्यास है खुद को आत्मा समझना। हर व्यक्ति को आत्मदृष्टि से देखना। प्रत्येक व्यक्ति एक आत्मा है और हम सभी आत्माएं एक परमात्मा के बच्चे आपस में आत्मा आत्मा भाई भाई। क्यों ये कहा जाता है सारा विश्व परिवार है, हम एक पिता परमात्मा के बच्चे आत्मा आत्मा भाई भाई हैं। पर इस एक मूल सत्य को भूल जाने के कारण और शरीर भान में रहने के कारण आप देखिए आज संसार में कितने भेदभाव उत्पन्न हुए हैं, कितने डिफरेंसेस में समाज विभाजित हो गया है। ये स्त्री है ये पुरुष है, ये काले हैं ये गोरे हैं, मैं युवा हूं ये बूढ़े हैं, ये हिंदू है ये मुस्लिम है, हम ब्राह्मण हैं ये राजपूत है। आज कितने भेदभावों में समाज विभाजित हो गया है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान का प्रथम सत्य यही है कि मैं आत्मा हूं। हर व्यक्ति एक आत्मा है। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास है स्वयं को आत्मा समझना, अपने वास्तविक आंतरिक आत्म स्वरूप का अनुभव करना। हमें स्पष्ट रहे कि शरीर स्त्री है शरीर पुरुष है, मैं स्त्री हूं गलत, मैं पुरुष हूं गलत। शरीर स्त्री है शरीर पुरुष है, मेल बॉडी फीमेल बॉडी को कहा जाता है। हम तो स्त्री शरीर या पुरुष शरीर को धारण करने वाली चैतन्य शक्ति हैं, आत्मा है। इसलिए जिससे भी मिले, जिसको को भी देखें, जिससे भी हम बातचीत करें, हम उनके मस्तक में देखें कि ये भी आत्मा है, मैं भी आत्मा हूं। देह दृष्टि से नहीं देखें, हम कंपैरिजन कर सकते हैं कि शरीर एक मोटर के समान है, मैं आत्मा इसको चलाने वाली चैतन्य शक्ति ड्राइवर के समान आत्मा। एक ड्राइवर दिन रात गाड़ी चलाता है पर वो अपने आप को गाड़ी नहीं समझता है। उनको क्लैरिटी है कि मोटर अलग है, मैं ड्राइवर इससे अलग हूं। हर क्षण हम शरीर द्वारा कर्म करते हैं, हम इन आंखों से देखते हैं, मुख से बोलते हैं, कानों से सुनते हैं, हमें स्पष्ट रहे कि हम आंख नाक कान नहीं है, हम इन कर्मेंद्रियों से अलग, इस शरीर से अलग चैतन्य शक्ति है, आत्मा है। शरीर एक मकान के समान है, मैं आत्मा इसकी मालिक, मेरा मकान है, मैं मकान नहीं हूं, मैं इस मकान की मालिक, इस शरीर की मैं मालिक हूं, इन कर्मेंद्रियों की मैं आत्मा राजा हूं। शरीर एक वस्त्र के समान है, मैं आत्मा इससे धारण करने वाली, इस विश्व नाटक की एक्टर पात्रधारी। शरीर एक रथ के समान है, मैं आत्मा उस पर सवार, रथवान रथी हूं। गीता का अध्ययन किया होगा, उसमें कहा है ना, आत्मा को रथी कहा, शरीर को रथ कहा। इसलिए आत्मा निकल जाने के बाद जब डेड बॉडी को उठाकर ले जाते हैं तो हम कहते हैं ना, फलाने की अर्थी उठी, फलाने की अर्थी जा रही है। और अर्थी मीन्स जिसमें रथी आत्मा नहीं है, उस डेड बॉडी को अर्थी कहते। इसलिए राजयोग का पहला अभ्यास खुद को आत्मा समझना। उठते बैठते चलते फिरते आत्मा स्मृति में रहना, औरों को देखते मिलते बात करते आत्मदृष्टि से देखना, ये आत्मचिंतन राजयोग का पहला अभ्यास है। अब और विस्तार से हम समझें आत्मा माना क्या। शरीर के बारे में हम जानते कि शरीर माना पांच कर्मेंद्रियां, हाथ पांव जिसको स्पर्शेंद्रिय हम कहते, आंख नाक कान मुख और हाथ, ये पांच कर्मेंद्रियां कहा जाता है। शरीर पांच कर्मेंद्रियों से बना है, आत्मा की मुख ये तीन शक्तियां हैं। मन, बुद्धि और संस्कार। मन प्लस बुद्धि प्लस संस्कार इज इक्वल टू आत्मा। मन, बुद्धि, संस्कार को मिलाकर आत्मा कहा जाता है। मन और बुद्धि फिजिकल ऑर्गन नहीं है, कोई प्राकृतिक अंग नहीं है। मन और बुद्धि आत्मा की चैतन्यता है, आत्मा की अभिव्यक्ति मन और बुद्धि से होती है। इसलिए आत्मा की मुख्य तीन शक्तियां हैं मन, बुद्धि और संस्कार। अब मन किसको कहते हैं? मन शब्द से आप सभी परिचित हैं। अक्सर हम कहते हैं मन की शांति चाहिए। बरसों से भक्ति करने वाले आज तक भी ये कंप्लेन करते हैं कि मन भटकता है। हम परमात्मा की याद में बैठते हैं, मन एकाग्र नहीं होता है। अब आप बताइए, मन भटकता है माना क्या होता है? मन भटकता है मीन्स क्या होता है? मन कोई चीज तो नहीं है जो निकल कर भटकती। जब हम कहते हैं मन भटकता है, माना क्या होता है? क्या होता है? विचार आते हैं, अनेकानेक विचार आ जाते हैं। बैठे हैं कोई एक सब्जेक्ट पर सोचने के लिए, बैठे हैं कोई एक बात पर मन लगाने के लिए, और अन्य अनेकानेक विचार आ जाते हैं। तो हम कहते हैं मन भटक रहा है, एकाग्र नहीं हो रहा। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं। सिंपल बात, आत्मा की मनन शक्ति, संकल्प शक्ति को मन कहते हैं। और मन का कार्य है सोचना, विचार करना, योजना बनाना, आइडिया क्रिएट करना, ये मन का कार्य है। मन का कार्य ही सोचना है। इसलिए सबसे पहली बात ये समझ लें, मन को विचार शून्य नहीं कर सकते। विचार ही न चले ये नहीं हो सकता है, क्योंकि सोचना ही मन कहा जाता है। संकल्प शक्ति को ही मन कहते हैं, इसलिए मन को विचार शून्य नहीं कर सकते। हमें मन का हट क्रियाओं से दमन नहीं करना, हमें मन को श्रेष्ठ चिंतन में लगाकर, मन को सुमन श्रेष्ठ मन बनाना है। हम मन को मार नहीं सकते हैं, हमें मन को सुधारना है। इसलिए राजयोग में हम चिंतन की दिशा को बदलते हैं, चिंतन को समाप्त नहीं करते, विचारों की क्वालिटी को बदलते हैं। अब तक खुद को देह समझते रहे, बॉडी कॉन्शियस रहे, इसलिए हमने मन का अधिक उपयोग शरीर चिंतन, संसार चिंतन, पर चिंतन, व्यर्थ चिंतन में ही किया। हर एक अपने आप को देखिए, अब तक हमने मन का अधिक उपयोग कौन से चिंतन में किया, कौन से चिंतन में किया, अधिकतर कौन सी बातें सोचते रहते हैं आप? वही नौकरी, धंधा, समाज, संसार, घर, परिवार, शरीर, संबंध, यही बातें सोचते रहते हैं। हम कह सकते हैं देहाभिमान के कारण अपने वास्तविक आत्म स्वरूप की विस्मृति के कारण अब तक मन का उपयोग हमने दैहिक दुनियावी बातें सोचने में ही किया है। व्यर्थ नकारात्मक ही हम सोचते रहते हैं। इसलिए अब हमें परिवर्तन करना है। अब हमें मन का उपयोग आत्मचिंतन, स्वचिंतन में करना है, परमात्म चिंतन में करना है, शुभ चिंतन, श्रेष्ठ चिंतन में करना है। अब हमें मन को उसमें भी लगाना है। इसलिए आप देखिए, पर चिंतन, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें आपस में मिलते हैं, कौन सी बातें सोचते हैं, कौन सी बातें करते, तेरी मेरी दुनिया भर की इसकी उसकी बातें ही करते रहते। उसमें समय की कोई सीमा नहीं रहती है, तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करने में। आपस में बैठते हैं, कहते हैं ना, अरे 2 घंटे बीत गए, पता भी नहीं चला। देर रात तक हम बातें लगाते रहते हैं, उसमें किसी को नींद नहीं आती है। यहां हम 10 मिनट, 5 मिनट आत्मचिंतन का अभ्यास कराते हैं, उसमें भी लोग सो जाते हैं। अभी भी आप देखिए आसपास, कोई सो तो नहीं रहा है ना? देखो, अच्छी तरह से देखो, मुझे तो दिखाई दे रहा है। ये क्या बताता है, ये क्या बताता है कि हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, हमें स्व में इंटरेस्ट नहीं है, हमें दूसरों में इंटरेस्ट है। कौन कहां जा रहा है, किससे मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, हमें ये देखने में, जानने में, सुनने में इंटरेस्ट है। पर हम खुद कौन हैं, कहां से आए हैं, क्यों आए हैं, ये जानने में, समझने में हमें इंटरेस्ट नहीं। हमें परमात्मा में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए उसकी याद में मन नहीं लगता। कहते मन भटकता, और फिल्में देखते हैं, सीरियल देखते हैं, तो वहां क्यों मन एकाग्र होता है? हमें नीची हल्की शुद्र बातों में इंटरेस्ट है, हमें श्रेष्ठ शुभ बातें सोचने में समझने में इंटरेस्ट नहीं। हम खुद अपने आप को देखें, हमने अपने जीवन का स्तर क्या बना दिया है। इसलिए अब परिवर्तन करना है, अब हमें अपने मन को आत्मचिंतन, परमात्मा चिंतन, शुभ चिंतन में लगाना है। तो आत्मा की विचार शक्ति को मन कहते हैं, मन का कार्य है सोचना। विचार अनेक आते हैं, एक मिनट अभी मैं आपको साइलेंस में बिठाऊं, आपको कई विचार आएंगे आएंगे कि ये सत्र पूरा होगा फिर हम नाश्ता करेंगे, चाय पिएंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कई विचार आ सकते हैं। पर इसी क्षण सभी विचार कर्म में आप नहीं लाते हैं, आप निर्णय करते हैं कि अभी हम ज्ञान सुनते हैं, फिर हम ये करेंगे ये करेंगे ये करेंगे। मन के अनेक विचारों पर निर्णय करने वाली शक्ति को बुद्धि कहते हैं। आत्मा की निर्णय शक्ति, जजमेंट पावर को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि का कार्य है, मन का कार्य है सोचना, बुद्धि का कार्य है उसे समझना, सिलेक्ट करना, चूज करना, डिसीजन लेना, निर्णय करना। इसलिए कहते हैं मन घोड़े के समान चंचल है तो बुद्धि उसकी लगाम है। लेकिन आज बुद्धि मन को कंट्रोल नहीं कर पा रही, क्योंकि बुद्धि पतित कमजोर बन गई है, बुद्धि ही भ्रष्ट हो गई। अक्सर हम कहते हैं बुद्धि भ्रष्ट, कर्म भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, संसार बन गया। पहले बुद्धि भ्रष्ट होती है, बुद्धि बिगड़ती है, विवेक नष्ट होता है, फिर कर्म बिगड़ते हैं, जीवन की श्रेष्ठ धारणाएं खत्म हो जाती हैं। आज बुद्धि पतित कमजोर भ्रष्ट बन गई, इसलिए मन को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम सही समय सही निर्णय नहीं कर पाते, हम निर्णय करते हैं उस अनुसार चल नहीं पाते हैं। ये बताता है कि बुद्धि पतित बन गई है। इसलिए अगर बुद्धि को शुद्ध, शक्तिशाली और दिव्य बनाना चाहते हैं, हमें बुद्धि परमात्मा से जोड़ने की आवश्यकता है, हमें बुद्धि योग परमात्मा से लगाने की जरूरत है। हम कहते हैं, हम गाते हैं, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम सबको सदमति दे भगवान। क्यों हम ईश्वर को कहते हैं सबको सदमति दे भगवान? जरूर हम आत्माओं ने उस परम पिता परमात्मा से कभी सत्य बुद्धि, शुद्ध बुद्धि प्राप्त की है, तब तो हम फिर से उनको कहते। इसलिए बुद्धि का योग, बुद्धि का अटेंशन परमात्मा के प्रति करना है, और इस प्रकार बुद्धि से निर्णय करने के बाद हम कर्म करते हैं, कर्म करते हैं, और जो कर्म हम करते हैं हर कर्म का प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। आत्मा करता है, आत्मा भोगता है। हर कर्म का प्रभाव आत्मा में रिकॉर्ड होता है, संचित होता है। आप कोई भी कर्म करो, अच्छे करते हैं या बुरे करते हैं या साधारण दैनिक कर्म करते हैं, खुलेआम करते हैं या गुफा में छिप कर करते हैं, हर कर्म का सूक्ष्म प्रभाव आत्मा पर पड़ता है। बार 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 उसी प्रकार के कर्म करते रहने से वो प्रभाव दृढ़ हो जाता है, जिससे स्वभाव संस्कार कहते हैं। कर्म ही संस्कार बनते हैं। हम 2 बार 10 बार 20 बार 40 बार गुस्सा करते रहते हैं, हमारा स्वभाव क्रोधी बनता जाता है। कर्म ही संस्कार, आदत बनते हैं। हम 2 बार 10 बार 20 बार झूठ बोलते हैं, हमारी आदत झूठ बोलने की हो जाती है। फिर अनावश्यक छोटी छोटी बातों में भी झूठ बोलते रहते हैं, क्योंकि आदत पड़ गई। छोटी 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 चीजों की चोरी करते करते व्यक्ति पक्का चोर बन जाता है। कर्म ही संस्कार बनते हैं, जो आत्मा में संचित होते हैं। और आत्मा जब शरीर छोड़कर जाती है और तो कुछ साथ नहीं ले जा सकती है, इस भौतिक जगत से जो हमने लिया है वो तो इस दुनिया में ही छोड़ करके हम जाते हैं, पर आत्मा के साथ क्या जाता है? संस्कार साथ जाता है। और जैसे संस्कार, ऐसी आत्मा की गति होती है, और पुनः ऐसी ही जीवन स्थिति फिर से प्राप्त होती है। इसलिए हमें कितना अटेंशन देना चाहिए। पर आश्चर्य की बात, कर्म करते हैं तब हम अटेंशन नहीं देते। हर एक अपने आप को देखिए, हम घंटों व्यर्थ नकारात्मक सोचते रहते, मन ही मन कुड़ते रहते हैं, मुख से तो बहुत कम बताते हैं, मन में कितना गुस्सा कर लेते, मन में कितना ईर्ष्या वैर द्वेष करते, हम घंटों व्यर्थ नकारात्मक बुरा सोचते रहते, हम घंटों तेरी मेरी दुनिया भर की बातें करते रहते, हम घंटों गलत कामों में लगे रहते हैं, हम भूल जाते हैं ये रिकॉर्ड हो रहा है मुजात्मा में। जब कर्म करते हैं तो अटेंशन नहीं देते हैं, जब कर्म फल भोगते हैं तब सोचने बैठते हैं कि मुझे इतनी भोगना क्यों आ रही, मेरे साथ ऐसा क्यों होता है, मेरे नसीब में ऐसा क्यों लिखा है, मुझे ही ऐसे लोग क्यों मिलते हैं, तब हम सोचने बैठते हैं। हम भूल जाते हैं हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर जब करते हैं तब हम अटेंशन नहीं देते हैं। और स्वयं का सत्य ज्ञान नहीं है, आत्मभिमानी नहीं है, हम स्व में स्थित नहीं है, इसलिए फिर दूसरों को दोषित करते रहते हैं कि इसके कारण मुझे प्रॉब्लम होते, यही मेरे लिए कांटा है, यही मुझे दुख देते हैं, यही मुझे डिस्टर्ब करते हैं, दूसरों को दोषित करते रहते हैं कि लोग ऐसे हैं, जमाना ऐसा है, परंतु सत्यता ये है कि हमारा किया हुआ ही हमारे सामने आता है, पर हमें खुद को देखने का अभ्यास नहीं है, हमें स्वदर्शन करने का अभ्यास नहीं है, हमें तो परदर्शन करने का अभ्यास है, दूरदर्शन देखने का अभ्यास है, स्वदर्शन करने का अभ्यास नहीं है। इसलिए ये बहुत जरूरी अभ्यास है कि रोज हम स्वचिंतन करें, स्वदर्शन करें, अपने इनर वॉइस को सुने, हम खुद खुद को समझाएं और सिखाएं। इस अभ्यास की जीवन में बहुत जरूरत है। यहाँ जो राजयोग आप सीखने जा रहे हैं उसका फाउंडेशन ये आत्मचिंतन है, आत्मदर्शन है। हम अपने वर्तमान संस्कारों को देखें, हम हरेक अपने स्वभाव संस्कार को देखें। आज हरेक आत्मा पतित दुखी अशांत बन गई, कोई काम वासना के वश है, कोई क्रोध के वश है, कोई लोभ के वश है, कोई अहंकार के वश है, हरेक आत्मा दुखी अशांत पतित है। दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी रिमार्क्स देते हैं कि फलाना बहुत अभिमानी है, बहुत झूठा है, फलाना बहुत प्रपंची है, धोखेबाज है, दूसरों के लिए तो बहुत जल्दी सर्टिफिकेट दे देते हैं, पर खुद को देखना है, स्वदर्शन करना है कि हमारे खुद के संस्कार कैसे बन गए। हम कह सकते हैं हम हरेक आत्मा कम या ज्यादा मात्रा में हरेक पतित दुखी अशांत तमो प्रधान बन गए हैं। इसलिए आपस में झूठा अभिमान है, इसलिए आपस में तो महसूस नहीं होता है, क्योंकि फॉल्स ईगो है, इसलिए हम स्वीकार नहीं करते। कोई हमारी एक भूल बताए, हम उनकी चार भूल बता देते हैं। अभिमान है, हम स्वीकार नहीं करते। पर जब हम ईश्वर को याद करते हैं, महान आत्माओं से मिलते हैं, पवित्र स्थान पर जाते हैं, तब महसूस होता है। इसलिए आरती में, भजन में, प्रार्थना में गाते हैं, मैं मूर्ख खल कामी कृपा करो भरता, तब तो गाते हैं। मैं पापी नीच कपटी हूं, मुझ निर्गुण हारे में कोई गुण नाही, मोसम कुटिल न कोई, तब तो कहते हैं, गाते हैं। इसलिए आज हम सभी पतित दुखी शांत बन गए हैं, पर अब हम क्या बनना चाहते हैं? अब हम क्या बनना चाहते हैं? क्या पतित दुखी शांत ही रहना है, या हमें पवित्र महान सत्य शांत बनना है? तो हमें एक और सत्य को समझना है कि बेशक हम आत्माएं पतित दुखी अशांत बन गई हैं, पर हरेक आत्मा ओरिजिनली पतित नहीं है। हम तो दुखी हो गए, मीन्स पहले हम दुखी नहीं थे, पहले हम दुखी नहीं थे। हरेक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। आज खुद को भूलने के कारण और अपने असली पिता, अपने असली धर्म कर्म भूल जाने के कारण, देहाभिमान के कारण आज हम पतित दुखी अशांत हो गए हैं। पर आत्मा ओरिजिनली पतित नहीं है। हरेक आत्मा अपने असली स्वरूप में शुद्ध है, सत्य है, पवित्र है। हर आत्मा के असली मूल सात गुण हैं। इसलिए हमें जीवन में क्या चाहिए, शांति चाहिए या अशांति चाहिए? क्या चाहिए? शांति चाहिए। क्यों? क्योंकि हरेक आत्मा ओरिजिनली शांत है। हमारी असलियत शांति है। खुद के आत्म स्वरूप को भूल देहभान में आते हैं तो गुस्सा आ जाता है। पानी का असली गुण शीतलता है, ठंडापन है, पर अग्नि के संग पानी गर्म होने लगता है, उबलने लगता है। अग्नि से हटा दो, फिर से पानी धीरे धीरे ठंडा होने लगता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनल क्वालिटी ठंडापन है। भाइयों और बहनों, हम सबका असली गुण शांति है, इसलिए हमें जीवन में शांति चाहिए, क्योंकि हमारी असलियत शांति है। पर जब हम आत्मा स्वरूप को भूल जाते हैं, देहभान में आते हैं, तो ये विकृति उत्पन्न होती है, गुस्सा आने लगता है। कोई भी व्यक्ति 24 आवर्स गुस्से में नहीं रह सकता है, क्योंकि उसकी ओरिजिनालिटी गुस्सा नहीं। हम कहते भी देखो क्या है, मुझे गुस्सा आ जाता है। मैं कहता हूं ना, मुझे गुस्सा आ जाता है, आ जाता है, आता है और जाता है। आखिर क्या रहता है, आखिर क्या रहता है? शांति। गुस्सा करके भी आखिर व्यक्ति शांत हो जाती है। तब हम कहते भी हैं कि अब मिजाज शांत हुआ, अब हम आपसे दो बात पूछें, अब दिमाग ठंडा हुआ, ऐसे बोलते हैं। गुस्सा आता है और जाता है, आखिर शांत हो जाते हैं, क्योंकि हमारी असलियत शांति है। इसलिए अब हम ये स्मृति रखें, ये पाठ पक्का करें कि मैं आत्मा शांत आत्मा हूं। यहां जो बार बार ओम शांति शब्द आप सुन रहे हैं, उसका अर्थ यही है। ओम मीन्स मैं आत्मा शांत आत्मा। अगर आप यही सोचेंगे, बोलेंगे कि मैं कहता हूं ना मुझे गुस्सा आ जाता है, मैं कहता हूं ना मेरा स्वभाव गुस्सेल है, अगर आप यही सोचेंगे, यही कहेंगे, तो आप गुस्सा ही करते रहेंगे, आप गुस्सा ही करते रहेंगे। इसलिए अब आप ये सोचें, ये सत्य पक्का करें कि मैं आत्मा शांत आत्मा, मेरी ओरिजिनल नेचर शांत। अगर ये अटेंशन रहेगा, आप अनुभव करेंगे, कोई कितना भी गुस्सा करेगा, आपको गुस्सा नहीं आएगा, क्योंकि आपको स्मृति है कि मैं शांत आत्मा। इस प्रकार हमें जीवन में सुख चाहिए या दुख चाहिए? सुख चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा ओरिजिनली सुख स्वरूप है। हम सुख के लिए मेहनत करते हैं, दुख के लिए नहीं। हमें सब प्यार करे वो अच्छा लगता है, या कोई हमारी घृणा नफरत करे वो अच्छा लगता है? क्या अच्छा लगता है? प्यार करे वो अच्छा लगता है। हर आत्मा को प्यार चाहिए, क्योंकि हर एक आत्मा ओरिजिनली प्रेम स्वरूप है। शरीर से कोई बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, पर है तो हर एक आत्मा ना। हर आत्मा को प्यार चाहिए, क्योंकि आत्मा प्रेम स्वरूप है। हमें सब खुशी आनंद में रहे वो अच्छा लगता है, कोई उदास निराश नाराज रहे वो हमें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि आत्मा आनंद स्वरूप है। हमें स्वच्छता अच्छी लगती है, गंदगी नहीं। हमें पवित्रता अच्छी लगती है, विषय वासना नहीं। हमें सच्चरित्रवान अच्छे लगते हैं, बदचलन वाले नहीं, क्योंकि हर एक आत्मा ओरिजिनली शुद्ध है, पवित्र है, सत्य है। ये हम आत्माओं की असलियत है। हम ज्ञान पाना चाहते हैं, अज्ञान मिटाना चाहते हैं, क्योंकि हम ज्ञान स्वरूप है। हमें शक्तिशाली लोग अच्छे लगते हैं, कमजोर कायर अच्छे नहीं लगते, क्योंकि आत्मा शक्ति है। ये हम आत्माओं के मूल सात गुण धर्म है। हरेक आत्मा इन सात गुणों का स्वरूप है। शरीर पांच तत्व से बना है, आत्मा सात गुणों का सार है। इसलिए हमें आत्मस्थ होने की जरूरत है, सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है, तो हमें शांति सुखानंद अपने में ही अनुभव होता है। हमें स्पष्ट रहे शांति जंगलों में नहीं है, मैं आत्मा शांत आत्मा हूं। इसलिए कहते हैं ना कि शांति के लिए बाहर भटकने की जरूरत नहीं है, भीतर जाने की जरूरत है, अपने आंतरिक आत्मा स्वरूप में स्थित होने की जरूरत। सुख साधनों में नहीं है, इन सब साधनों से सुविधाएं होती हैं, आराम मिलता है, पर इन साधन सुविधाओं का सुख भी तब अनुभव होता है जब मैं आत्मा सुख स्वरूप। अगर मुझे सुख चैन नहीं है तो मुझे अपार वैभव महल में भी सुख नहीं लगता। मैं सुख स्वरूप हूं, मुझे अपनी झोपड़ी में भी सुख अनुभव होता है। आनंद फिल्मों में सीरियल्स में नहीं है, हम आत्मा आनंद स्वरूप। अगर मुझे खुशी नहीं है, कितनी भी बड़ी पिकनिक पार्टी महफिल हो, मुझे मजा नहीं आता है। मैं आनंद स्वरूप हूं, मुझे अपने दाल रोटी में भी आनंद आता है। इसलिए हमें आत्मभिमानी बनने की जरूरत है, सोल कॉन्शियस बनने की जरूरत है, तो हमें स्वयं में ही सुख आनंद शांति शक्ति अनुभव होती है। और लास्ट बात कि हम आत्माएं इस दुनिया में आकर शरीर धारण कर कर्म करते हैं, कर्म फल भोगते हैं। अभी जिस दुनिया में हम बैठे हैं, इन आंखों से जो संसार आप देख रहे हैं, ये साकार मनुष्य लोक है, ये भौतिक जगत है, ये मटीरियल वर्ल्ड है, ये ग्रॉस वर्ल्ड है, स्थूल वतन, तत्वों की दुनिया है। आत्मा इस दुनिया में आकर, प्रकृति से बने इस जगत में आकर, प्रकृति के तत्वों से बने शरीर को धारण करती है, इस शरीर द्वारा कर्म करती है, कर्म फल भोगती है। इसलिए इस दुनिया को कर्म क्षेत्र है, ये कर्म क्षेत्र है, वर्क प्लेस है, ये दुनिया हमारा घर नहीं है, कर्म क्षेत्र है। इसलिए हम कंपेयर करते हैं ना कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, सृष्टि रंगमंच है। हम आत्मा इस वर्ल्ड ड्रामा की एक्टर हैं, शरीर हमारी ड्रेस है। हम कहते हैं दुनिया मुसाफिर खाना, जीवन यात्रा कहते हैं, आत्मा को मुसाफिर कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं ना, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। वैसे तो हम ये सत्य भूल जाते हैं, पर जब कोई शरीर छोड़ते हैं तब फिर याद आता है, तब हम कहते हैं देखो क्या साथ ले गया, अकेले आए हैं, अकेले जाना है। पर कहां से आए हैं, कहां जाना है, ये पता नहीं है। आए हैं पर कहां से आए हैं, जाना है पर कहां जाना है। हम आत्माओं का असली घर इस दुनिया से दूर है, पांच तत्वों से पार, प्रकृति का एक और अति सूक्ष्म छठवां अखंड लाल ज्योति तत्व है, जिसे ब्रह्म महतत्व कहते हैं। चित्र में सबसे ऊपर गोल्डन रेड कलर से बताया है, वो हम आत्माओं का असली घर परम धाम है, जिसको हम परलोक, ब्रह्मलोक, मुक्ति धाम, शांति धाम कहते हैं। इस दुनिया से दूर, पांच तत्वों से पार, छठवां अखंड लाल ज्योतिर्मय ब्रह्म महातत्व है, हम आत्माएं उस ब्रह्मलोक के निवासी हैं। वहां हमें शरीर नहीं है, इसलिए कर्म नहीं है, हलचल नहीं है, आवाज नहीं है, वो शांति की दुनिया है, साइलेंस वर्ल्ड है, ये टॉकी वर्ल्ड है। यहां हमें शरीर मिलता है, ऑर्गन्स मिलते हैं, हम आवाज में आते हैं, ये टॉकी वर्ल्ड है, वो साइलेंस वर्ल्ड है, वो रूहों की दुनिया है, वो हम आत्माओं का असली घर है। इसलिए इस दुनिया में रहते हुए अगर ये सत्य याद रहा कि मैं आत्मा परम धाम की निवासी हूं, मैं तो इस दुनिया में सिर्फ पार्ट बजाने आई हूं, तो हम इस दुनिया में रहते हुए भी अनासक्त रह सकते हैं, और इस शरीर में रहते हुए अगर ये सत्य याद रहे कि मैं आत्मा हूं, तो हम इस देह में रहते हुए भी आत्मभिमानी रह सकते हैं। तो ये है राजयोग का प्रथम लेसन, स्वयं का वास्तविक परिचय, हम आत्मा हैं। अब हम कुछ क्षणों के लिए आत्मा अनुभूति का अभ्यास करेंगे। सभी व्यवस्थित बैठ जाए। अपना पर्स, फाइल, बैग, डायरी साइड में रख दे, हाथ में गोद में लेके न बैठे। कमर सीधी रखकर बैठेंगे ताकि आप थके नहीं। एक दो से अलग अलग होकर बैठेंगे, टच करके नहीं बैठे। आंखें नेचुरल खुली रहने दें। आज मैं आपको योग अभ्यास करा रही हूं, इसलिए आप मेरे मस्तक में देखेंगे। इस स्मृति के साथ कि मैं भी आत्मा हूं, आप भी आत्मा हैं, खुद को आत्मा समझते हुए अन्य को आत्मा दृष्टि से देखते हुए हम अपने असली स्वरूप का चिंतन करेंगे। हम शरीर से यहां बैठेंगे, मन और बुद्धि से अपने असली घर परमधाम में जाएंगे और अपने असली स्वरूप का चिंतन अनुभव करेंगे। कैसे चिंतन करना है मैं आपको मार्गदर्शन दूंगी, कमेंट्री दूंगी। आपको मुख से बोलना नहीं है, पर जो विचार मैं आपको दूं वो मन ही मन आप रिवाइज करेंगे, उस अनुभव में स्थित होंगे, आत्म स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं एक आत्मा हूं, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, अविनाशी चैतन्य शक्ति हूं। शरीर तत्वों से बना है, जड़ है। मैं शरीर से अलग आत्मा हूं, चैतन्य हूं। मैं इन आंखों द्वारा देखती हूं, कानों द्वारा सुनती हूं, मुख द्वारा बोलती हूं, पर मैं आंख नहीं हूं, कान नहीं हूं, मुख नहीं हूं, मैं इन कर्मेंद्रियों से अलग आत्मा। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक, इन कर्मेंद्रियों की राजा हूं। अपने असली स्वरूप में मैं सत्य सत्य चैतन्य
मेरे लिए यह दुनिया एक कर्म क्षेत्र है। मेरा असली घर शांति धाम है। मैं परम धाम की निवासी हूं। मैं शांत और शीतल पवित्र आत्मा हूं। मैं आत्मा सत्य चैतन्य आनंद स्वरूप अजर अमर अविनाशी मुझे स्पष्ट है। शरीर जन्मता है, शरीर मरता है। मैं शरीर से अलग आत्मा अजन्मा मैं आत्मा शाश्वत सनातन हूं। जैसे ही मैं खुद को आत्मा समझती हूँ मन शांत होने लगता है। मुझे स्वयं में आनंद अनुभव होता है। मैं आत्मा हूँ, शांत हूँ, स्वयं एक शक्ति हूँ।
ओम शांति।